परम भागवदीय पुण्य श्लोक परमात्मनीय श्रद्धेय श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज, श्रीमद स्वामी अखंडानंद जी महाराज, स्वामी विद्यानंद जी महाराज और आप सब के हृदय में विराजित परमात्मा को ये दास का पुनः पुनः प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। कुछ पाठ करेंगे, अपनी वाणी को पवित्र करें। 23वें श्लोक से पाठ करेंगे। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृतिम् चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते हरिः ओम। देखिए, कुछ लोग तो जीवन जो जीते हैं लगता है कि वो जीते हैं कि मुर्दे हैं, वो मरवाना वाक्य जीवे छे। जैसे कि वो हमारे आश्रम में आने वाली एक शिक्षिका ने फोन किया, स्वामी जी कि मेरा पिताजी को हार्ट अटैक हो गया है, कृपया थोड़ा प्रार्थना कीजिए, मैं उनको शाल हॉस्पिटल में लेके जा रही हूं। ठीक है, प्रार्थना करते हैं। स्वामी जी जल्दी आइए ना, मैं थोड़ा शांति से आऊंगा। दिन भर नहीं गए, रात में गए शांति से 10 बजे। सवेरा होगा कि नहीं पता नहीं है, ऐसे हो रहा है। अभी तो 2-3 दिन हो गए, रोज फोन करते हैं, दिन में 4-5 दफे डॉक्टर को भी मिल के आए, बड़े डॉक्टर हैं। स्वामी जी थोड़ा अभी वेंटिलेशन पर रखा है, थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे तो फिर उनको बाईपास सर्जरी तो करना ही पड़ेगा। आप डॉक्टर लोग हैं, जैसा उचित समझे। भाई नहीं है कोई इसके, सोनल के 3 भाई नहीं है, माता पिता के पास वही अकेली रहती है, टीचर है, कमाती है, माता पिता का देखभाल करती है। ओ 3-4 दिन के बाद बाईपास सर्जरी कर लिया, अभी तो कुछ अच्छा है, वेंटिलेशन से निकाल देंगे, तो 2 दिन के बाद वेंटिलेशन निकाल दिया, अच्छी बात है। फिर 24 घंटे के बाद में फिर वेंटिलेशन लगा दिया, अभी किडनी काम नहीं कर रही है ठीक, उसको डायलिसिस करना पड़ेगा। ऐसे करके 7-8 दिन हो गए, अभी कुछ और इन्फेक्शन है। मैंने पूछा, सोनल बेटा बताओ तुम्हारे पास में पैसे कितने हैं, रोज तुमको कितना पैसा लगता है? समझिए 80,000 रुपया रोज लग जाता है। देखो बेटे, अभी 10 दिन हो गया पापा को, तुम्हारे 7 लाख रुपया तो खर्च हो गया। अब ये 7-8 लाख रुपया जो है तुम्हारे पास थे क्या? मैं समझी क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है, मां को फोन दो। मैंने कहा देखिए माता जी, ये ऐसे सुइयां लगा के लगा के लगा के और 5-7 दिन में इनका प्राण छूट जाएगा, नहीं तो ये सुइयां सब निकाल दो, घर लेके जा, शाम को छूट जाएगा। जो इंसान अभी मृत्यु के द्वार पर खड़ा है उसको इतनी सुइयां चुभाने का मतलब क्या है? शांति से मरने दो, मुझको क्षमा करना, आपके पति हैं, हमारी बिटिया सोनल के पापा हैं, किंतु एक सत्य है कड़वा, मैं कहता हूं। वो डॉक्टर को बोल दिया उन्होंने, रात में बोला तो ये हॉस्पिटल वाले दोपहर को 12-1 बजे छोड़े, बड़ा किट किट करके छोड़े, शाम को 6 बजे उनका शरीर शांत हो गया। तो अभी हम बोलते हैं कि वो हॉस्पिटल में रहे, वो जीते थे कि मुर्दे थे, बताइए क्या करना है। जिस दिन हम यहां आए बंबई में 15 तारीख को, इस बार हवाई जहाज के एयरपोर्ट से सीधे ही मुलुंड गए थे स्कॉटिश हॉस्पिटल। हमारे जब थाना में जाते हैं, जिस कल्याणमयी माता के पास रुकते हैं, अभी तो 15 तारीख के 3 दिन पहले उनको भर्ती किया था 12 तारीख को। अभी देखो अभी तो 30 तारीख हो गया, अभी भी 100 सुइयां लगी हुई है। इत्तेफाक से हफ्ते भर से वेंटिलेशन निकाल दिया है, डायलिसिस तो चल रहा है। कृष्ण बहुत स्पष्ट है, वो कृष्ण ने जो कुछ कहा है वो बड़ी दुनिया की एक ठहरी हुई बातें कही है। कुछ लोग जो हैं वो जीते रहते हैं जैसे कि वो उसमें जीवन है ही नहीं, प्राणी नहीं है, मुर्दे के माफिक है। अभी आप कितना दिन तक, ये मलाड में एक डॉक्टर है, वो 29 साल से कोमा में है, डॉक्टर है, वो पत्नी ने एक कमरा रखा है, वो डार्क रूम, उसमें उनको रखती है। दिन में 2 बार स्पंज पाउडर वगैरह लगाया जाता है, नर्स देखती है डॉक्टर। वो जो डॉक्टर का हॉस्पिटल था उसको नर्सिंग होम, पत्नी बहुत व्यवस्थित है, वो नर्सिंग होम को चलाती है। किंतु वो 29 साल से उनका कोमा में रहना, ये क्या मृत्यु है, जीवन है? उनका अपना हॉस्पिटल है, अपने डॉक्टर हैं, अपनी सुविधा है, कैन अंडरस्टैंड, इट्स ओके, और वेंटिलेशन में नहीं है। तो कुछ लोग जो हैं वो ऐसा जीवन यापन करते हैं कि जैसे कि वो जीवन नहीं है, मुर्दा ही है, फिर भी कहते हैं जीव तो छे, प्राण छे, ये क्या हुआ? और कुछ लोग मरने के समय में भी ऐसे मरते हैं जैसे मरा ही नहीं, हाँ जी रहा है, जैसे ट्रेन में बैठ करके गया हमने देखा। हाँ महात्मा लोगों की बात तो बड़ी है भाई, घर की गृहस्थियों की बात करें। हाँ एक राजकोट में महिला रही, सिंधी परिवार, उनके घर में हम लोग रुकते रहे। वहां उनके यहां बहुत बड़ा उन्होंने सत्संग भवन बना रखा था। 5 भाई थे, एक ही भाई ठीक सलामत है, उनकी पत्नी, बाकी 4 भाई सब पागल, क्या कुछ करेंगे कोई भरोसा नहीं। ये महिला 5 भाइयों के बीच में ये सबसे दूसरे तीसरे भाई की पत्नी, कभी मैंने उनकी आवाज नहीं सुनी। उनके शहर में बहुत बड़ा भागवत आयोजन के पूर्णाहुति में हमें बुलाया गया, तो लोग हमारे पहचान वाले दिव्य जीवन संघ के शिवानंद परिवार के लोग आए, स्वामी जी हितेशा की मम्मी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्रिटिकल कंडीशन में है, आप उनको कब देखने जाएंगे? भागवत कथा के आयोजक भी रहे। तो उनसे हमने पूछा, भाई आपके पूर्णाहुति कितने बजे है? स्वामी जी पूर्णाहुति तो शाम 5 बजे है, कथा 3 बजे चालू हो जाएगी, हम 5 बजे आने से ठीक है? बिल्कुल ठीक है स्वामी, 2 बजे आए, अभी ट्रेन में आए हैं, सीधे ही गए। वो हृदय जी ने कहा कि स्वामी जी मम्मी ने बहुत तकलीफ से सुबह कहा था कि स्वामी जी आएंगे तो उनको धोती देना, तो आप स्वीकार करेंगे? दो बेटा दो, फूलमाला भी दो, धोती भी दो, पेड़ा दो, सब कुछ दो, दक्षिणा भी दो। एक कटोरा भर के गंगा जल उनके मुंह में बैठ के डालते रहे। वो कैसे 4:15 बजे तक, फिर हमने बहुत धीरे से उनके कान में कहा, गीता भाभी देखिए अभी मेरे को भागवत कथा में जाना है, मैं जा रहा हूं, थोड़ा सेंस में है, बोल नहीं सकती। रात में ट्रेन मेरी तो 11:30-12 बजे है, वो कथा की समाप्ति के बाद 8:30 बजे मैं आ जाऊंगा, आप जाने की जल्दी नहीं करना, और अगर जाना भी है तो ओम नमो नारायण बोल के जाना। तो बोलिए ओम नमो नारायण, उनको मैंने बोलने के लिए क्या हो, बड़ी धीरे से बोली, बोलने के साथ में मेरे हाथ में उनका सिर है, खत्म, दाहिना हाथ है सिर के नीचे, प्राण छूट गया। अभी देखिए वो सवेरे कहिए स्वामी जी आए तो धोती देना, फूल की माला देना, क्योंकि वो पूरे घर में वही एक ही समझदार है, बाकी सारे भाई पागल है, पति हमेशा जिंदा है मगर वो बीमारी रहता है, लड़की छोटी क्या समझेगी, मगर मरने तक पूरा एक स्पष्ट विचार लेकर के। कितने लोग ऐसे हमारे, मैंने पहले भी आपको इन दिनों में कह चुका हूं, हमारे आश्रम की एक ट्रस्टी हैं श्रीमती पूनम थवाणी, उनके ससुर साहब वो 98 में मेरे को कहा, वो चार महीना पूना रहते थे, अपने एक बेटा है आर्मी का ऑफिसर ब्रिगेडियर, चार महीना अपनी बेटी के पास रहते थे, गुड़गांव में डॉक्टर है, चार महीना हमारे यहां अहमदाबाद में रहते थे। और मान लीजिए कि गिरीश भाई ड्रेस वाला का घर कितना दूर है, वहां से ये कितना है, रोज पैदल आते थे, सुबह 7:45 शाम को 7:45 जैसी ने दादा रोज दो दफे आएंगे, सवेरे आकर चले जाएंगे, शाम को बच्चे उनको लेकर के जाएंगे। वो मेरे से कहे, स्वामी जी मैं तो अपना 100वां साल है ना बड़े खुशी से मनाना चाहता हूं आपके आश्रम में। ठीक है, मनाइए। फिर लिस्ट किया इतने लोगों को, उनसे बड़ा प्यार था, इतने लोगों को बुलाना है और ये कुछ करना है। मैंने कहा पैसा कहां से आएगा, इतना कौन देगा, और पैसे का बंदोबस्त भी किया है, ये आदमी इतना पैसा देगा, ये आदमी इतना देगा, ये आदमी इतना देगा। मैंने 3 किताब लिखी है, उनको प्रिंट करना है, तो ये लोग प्रिंट करेंगे, प्रूफ रीडिंग आप कर लेना। और तमाम बात करने के बाद में वो यहां से चले गए गुड़गांव, गिर गए तो इलियम पेल्विक पूरा टूट गया। अब देखो इलियम पेल्विक टूट जाए बंदे को खड़ा होना मुश्किल, चल तो सकता नहीं, समझ लो उसको 5-6 महीना से ज्यादा चलेगा नहीं। मैं सोचता रहा इनका क्या होगा, मगर वो ठीक हो गए, चले। फिर मेरे को गुड़गांव बुलाया, बोले दिस इज माई लास्ट विजिट टू गुड़गांव, नाउ आई एम कमिंग फॉर गुड अहमदाबाद। और 100 साल का तो करना ही है, 100 साल बड़े डमडम से किया, दुनिया भर से संबंधी लोग आए, और 101 साल भी हो गया। 101 साल के बाद में 7 दिन भी हो गया, गुरुवार था, मैं किसी ने हमको पपीता भेजा था अपने पेड़ का, नारियल भेजा था, मैं लेके गया, भाऊ ए चलो खाएंगे, कमरे से उठकर टेबल में आकर के स्कूप करके पपीता खाया, ऐसा करके ट्यूब से पानी भी पिया, फिर उठ करके अपना दांत निकाल के धोया, धोने के बाद में बिस्तर में लंबे हो गए। अब क्या बोल रहे हैं, स्वामी जी हने भगवान के चो मुखे घुराई ले, भगवान से कहिए मुझे वापस बुला ले। हमने कहा अभी तो 101 साल और 7 दिन, अभी 7 साल पूरे बाकी है। नहीं नहीं नहीं, व्हाट ही सेड सो, कृष्ण क्या बोल रहे हैं वही बात। अब मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है, मेरे मन में कोई तृष्णा नहीं है, दुनिया मैंने बहुत देख रखी है, अब मैं केवल भगवान के दरवाजे में खड़ा हूं, स्वामी जी भगवान से प्रार्थना करो वो दरवाजा खोल ले और मेरे को आलिंगन करके वेलकम करे। बोलिए, बिस्तर में लंबे पांव करके लेटे हुए हैं अच्छे से, और साथ में उनकी बेटी है जर्मनी से आई हुई, उनका बेटा है, बेटे की बहू है, पोती भी है, पोती की सहेली भी है, मैं हूं, एक और महात्मा है और डॉक्टर स्नेहल अमीन डॉक्टर भी हैं, उनकी सेवा करने सब लोग हैं। वो क्या बोल रहे हैं, स्वामी जी करो प्रार्थना करो। हाँ, मैं भी आंख जोड़ करके बोलने लगा, हे अल्लाह हुरमस दहा जियो आजंदे वस्त वाहे गुरु सतनाम जीसस मोसस बुद्ध महावीर झूले लाल, वो सिंधी झूले लाल बोले, हे झूले लाल, भाव कहते हैं उनको, अभी कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई वासना नहीं, वो आपके दरवाजे पर खड़े हैं, कहते हैं कि हम प्रार्थना करें कि आप दरवाजा खोलिए, तो कृपया दरवाजा खोलिए, दोनों हाथ से उनका आलिंगन दीजिए, वेलकम हिम। और रुकून की बेटी है रुक्मणी, स्वामी जी बाहू इज ऑलरेडी गॉन, वो चला गया, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको मृत्यु बोलेंगे क्या। वो रेलवे स्टेशन में हम खड़े थे, टाटा, फिर हम लोग भी ऐसे करते दूर तक दिखेगा। हाँ, वो एक तो मृत्यु ऐसे होती है जैसे कि ट्रेन में बैठ के गया, हम लोग टाटा करते रहे, और एक मृत्यु ऐसी होती है कि वो सड़ जाता है, उसमें गुजराती में सूखे घारा पड़ी जाए, बैड सोर्स इतने गंदे हो गए कि उसमें 10 आपका स्प्रे का बोतल डाल दो, बढ़िया आपका माधव बाग से लाकर इत्र डाल दो, कितना भी कोई उठाने को तैयार नहीं, इतना बदबू आती है। कृष्ण बहुत स्पष्ट है, कहते हैं कि आपका मृत्यु ऐसा हो जैसे कि आप हंसते हंसते कहीं यात्रा में जा रहे हैं, वेन यू लीव दिस प्लेस यू गो ऑन लाफिंग एंड लाफिंग, आनंद से खुशी से हंसते हंसते चले जाएं। ये नहीं कि दुखी होकर जिंदे हैं मरने के समान, तो ये तो जीवन नहीं है, ये कैसे संभव हो सकता है। देखिए नारायण, ये बात बहुत स्पष्ट है। आप कितना गंगा नहाओ, कितना यमुना नहाओ, कितना करोड़ जप कर लो, किंतु आपके मन की जो वृत्तियां हैं वो नौका को किनारे से बांध करके सारी रात चलाता रहे, वो वहीं नौका रहेगी। वो जो कोलू का बेल होता है, स्पीडोमीटर लगा दे, वहीं का वहीं है, मगर मीटर बताता है कितना चल गया, 39 किलोमीटर, वहीं का वहीं है। हमारी वृत्ति कहां है? वृत्ति में मरने के समय मेरे को कोई आकांक्षा नहीं, मोक्ष की भी नहीं चाहिए, भगवान की तो चाहिए ही नहीं, मोक्ष की भी नहीं चाहिए। मन कैसा चाहिए? शांत लाल। हे अभी महाराज क्या बोले थे, यथाधीप निवास हस्ते। वो जब हवा नहीं चलती है कैसा एक दीपक रहता है, ऐसे मन शांत, कोई इच्छा नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई विचार नहीं, निर्विचार। ये होता है क्या? होता है ना, हमने क्या कहा? वो आगे बोल के गए, जब आप ओमकार का अभ्यास करते रहो, जितनी दफे हो इतना मतलब तो कोई विचार नहीं रहता है ना, मगर वो कैसे होगा? रोज का अभ्यास करते रहने से होगा, सुबह दोपहर शाम रात करते रहो। जिस आदमी को बीड़ी के तलब है वो कल कहा आपको कि चाय की एक आदत है, हा? वो जो चाय की आदत है तो बिना चाय के गुजारा चलता नहीं है, बीड़ी के तलब है बिना बीड़ी के चलता नहीं है। किसको ये कि भाई खाने में मेरे को मठा तो चाहिए ही चाहिए, बिना मठे के गुजारा होता नहीं। एक एक लोगों की आदत है, तो कितनी आदत करते है? एक आदत कर लो ओंकार की, चलते बैठते फिरते घूमते सब समय ओंकार करो। नारायण क्या तकलीफ है? हाँ क्या बोलते हैं, बोलिए, इजीएस्ट, श्योरेस्ट, सेफेस्ट, चीपेस्ट, क्विकेस्ट। एक तो पैसा, इजीएस्ट, श्योरेस्ट, सेफेस्ट, चीपेस्ट, क्विकेस्ट। आपके लिए कोई एक पैसा, हाथ पांव नहीं हिलना, 10-20 कोस नहीं चलना, राधे कृष्ण बोल तेरा क्या लगेगा मोल। हाँ, मंगलमय नाम तुझे सतत गाव दे, भव सागर कठिन घोर, षड रिपुति करित जोर, तुकियाची नाव विठा पार हो दे, मंगलमय नाम तुझे सतत गाव दे। तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी बात है। क्या कहा उन्होंने? कहा कि नारायण देखिए, हमारे ये यत्र काले तुनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यांतितम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। ये भरतर्षभ मैं तुम्हें कह रहा हूं, हमारे कल्याण का है 8वां अध्याय, हमारे जीवन को मंगलमय करने के लिए और मृत्यु को मंगलमय करने के लिए ये हमारी चाबी है, 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म। तू भरतर्षभ यत्र काले प्रयाता योगिनः अनावृतिम। तू और भरतर्षभ है अर्जुन, जिस काल में, काल क्या कहा है, काल का अर्थ है कि वह गति, मृत्यु के समय क्या गति है, व्हाट इज इन योर माइंड, हर सांस में जो होगा वही आएगा। वो गांव में वो अनाज भरने के लिए ऊंचा कोठी रखते थे पहले, ऊंचा कोठी, और नीचे एक छेद रहता है, वहां वो कपड़ा फंसा के रखते हैं, तो नीचे से अनाज निकाल लेते हैं। उस कोठी में आप बढ़िया दाऊद खान गेहूं भरते रहो भरते रहो, वो पूरा कोठी भर गया। अब नीचे से खोलो, जो खोलेंगे तो उसमें से दाऊद खान गेहूं निकलेगा कि डबल घोड़ा बासमती चावल निकलेगा, बोलो। अरे नारायण, जो डाला है वही तो आएगा, जो नहीं डाला है वो तो नहीं आएगा। सारा जीवन का जोड़ी मृत्यु है, मृत्यु तो अनिवार्य है। और इस भ्रांति में नहीं रहना कि हमारे तमाम ऋषि मुनियों ने कहा है कि मारू वृंदावन चे रूडू रे वैकुंठ नहीं आऊ, नहीं जी, नहीं 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 नहीं। तो आप भी बोलेंगे मारू मुंबई चे अनेरू के मारे तो वैकुंठ नहीं जाऊं, मुंबई एटले मुंबई स्वामी जी। देखिए अभी सीलिंग में प्रवेश करते ना, हाय लगता है जैसे कि कैलिफोर्निया में आ गए। सीलिंग पूरा होता है तो उधर से देखेंगे, दूसरी ओर से लगता है कि हम लोग हैं वो न्यूयॉर्क के अंदर हडसन रिवर के सामने, कितना सुंदर है, बस उसमें आ गए हैं। तो ये हम लोग ऐसा मानते हैं कि हम हडसन रिवर में आ गए, कि कैलिफोर्निया में आ गए, तो ये कैलिफोर्निया है कि ये न्यूयॉर्क है, वो हमारे जीवन का क्या कल्याण करेगा? आंखों के लिए तो देखने को अच्छा लगता है। नहीं नहीं, बंबई में कुछ है, बंबई में जो रह गया उसको और कहीं नहीं जमेगा। तो बंबई में तो कीड़े भी बहुत हैं, हाँ, ये चलने के लिए चले जाएं, बिल्लियां भी बहुत हैं, कुत्ते भी बहुत हैं, हाँ, आधे नंगे लोग हैं, हाँ, कितने लोग बच्चे, बिल्कुल, हाँ, ओ ओ लगता है कि ये भेलपुरी की दुकानें यहां चौपाटी में कर दी गई है, वो एक कूड़ा खाने के माफिक है, जैसे घर में कचरा पेटी होती है, हाँ, वैसे के माफिक है। तो यही क्या बंबई है, अपने आप को सोचना, टटोलना, यही क्या जीवन है आपका, बंबई है, कलकत्ता है, दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है, कहीं चले जाओ, इटली में चले जाओ, मिलान चले जाए, क्या क्या है, किंतु ये तमाम लोग जो हैं, वो हमको बाह्य जो दर्शन है वो चकाचौंध है, रोशनी है, मकान है, ये तो दे सकते हैं, किंतु आपके भीतर को शांति, शांति ही आर्जवम, शाम को जो बात कहा ना, शांति ही आपको भीतर में अगाध अपार शांति, कोई इरिटेशन नहीं, कोई एजिटेशन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई यातना नहीं, कोई केवल आनंद की, क्या दे रहा है, क्या हमारा आनंद कहां तक सीमित है, ये भेलपुरी तक सीमित है, चाट तक, सैंडविच तक, नारियल नुपानी, आनंदों का दूध मिल्क, यही है, हाँ। तो ये हमारी जो ये दौड़ है, क्या बोलते हैं, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो बंबई वाले की दौड़ कहां है, भेलपुरी तक। तो ये नहीं करना भाई, बड़े तो बहुत भाग्यवान हैं कि आपको एक प्रेमपुरी मिला है शहर के बीच में। प्रतिदिन इतने हमारे कहते हैं, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुश्रुते न, मैं तो प्रेमपुरी में सवेरे से शाम तक सभी सत्संग सुन के आती हूँ, अपना डब्बा लेके आती हूँ, भोजन कर लेती हूँ, यहीं के यहीं पे शाम को जाती हूँ, ठीक है, आपके बच्चे भी समझेंगे, सासू सासू गया तो नहीं रहते, हाँ, सवेरे सवारे छोकरो मुकी जाए, सांझे पाछो ले तो जाए, नथिंग रॉन्ग इन दैट, अमेरिका में लोग ऐसा करते हैं, किंतु आपकी व्यक्तिगत साधना क्या है, श्रवण करना तो अच्छा है, सबसे पहली साधना है, हाँ, श्रवणम कीर्तनम, सबसे पहला तो श्रवण है, श्रवण तो करना चाहिए, किंतु जो श्रवण किया है उसका मनन भी है क्या, निधिध्यासन है क्या, जो श्रवण किया है उसका मनन करो, निधिध्यासन, उसको पुनः पुनः श्री आनंदमयी मां के पास में हम गए, मां नरेंद्र नगर में रही, एक ब्रिगेडियर के पास साथ में ले गए, ब्रिगेडियर देहरादून में थे, लक्ष्मी नारायण सबरवाल, कहते मां अब तक हम देहरादून में रहे, आपका दर्शन हरिद्वार में करते थे, देहरादून में करते थे, हमारे गुरुदेव का बाबा का दर्शन ऋषिकेश में, अभी हमारा ट्रांसफर हो गई है टैंगा वैली आसाम में, अभी हमारा क्या होगा। तो माने कहा देखिए, ये गुरु ने जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं वो उनका शब्द ब्रह्म दर्शन है, आप जो कर रहे हैं ना ये शब्द ब्रह्म है, सवेरे जो हम सुनते हैं महाराज जी के पवित्र वाणी वो शब्द ब्रह्म है। तो बोले कि गुरु ने जो ग्रंथ लिखे हैं सवेरे उठ के दो चार पेज पढ़ लो बाबा, शाम को फिर से पढ़ लो, स्टार्ट योर डे विद गॉड, एंड योर डे विद गॉड, फील योर डे विद गॉड, आरंभ करो गुरु के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ जो है, वो ग्रंथ नहीं है, वो आपके कल्याण के लिए उन्होंने अपना अनुभव अपने साधना का निचोड़ डाल दिया है। सवेरे उठने के साथ में दो चार पेज पढ़ लो, वो दिन भर आपके मन में रहेंगे, शाम को सोने के पहले फिर भी उन्हीं को पढ़ लो, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है, सुसुप्त चेतना है, सूक्ष्म मन है, उसमें वो विचार चलता रहेगा थ्रू आउट द डे। माला के बीच में डोरा दिखता नहीं है किंतु है, बिना उसके गुजारा नहीं है, माला का कोई नाम बोलने से माला होती ही नहीं है, वो तो एक फूल के पीछे दूसरा फूल है, हाँ, अंदर डोरा बीच में आधार है, इसलिए उसको आप माला बोल देते हो, फूल को अलग अलग कर लो और फिर फूल ही हो जाएंगे। तो हमारे प्रत्येक जीवन के प्रत्येक कार्य के बीच में अवेयरनेस चाहिए, किसकी, मेरा इस क्षण अंतिम क्षण है, हाँ, इस क्षण अंतिम क्षण है। कोई एक सज्जन आए थे मेरे को बोल रहे हैं, स्वामी जी मेरी बड़ी इच्छा है मैं आपको भोजन कराऊं, मेरे बच्चे लोग सब विदेश चले गए हैं और मैं कुछ और काम कर रहा हूं, मैं आपको गोविंदा में लेके जाऊंगा वहां। मैंने कहा भाई देखिए मेरे को यहाँ लालजी भाई बढ़िया भोजन देते हैं, प्रेमपुरी में मेरे को प्रेमपुरी कृपा प्राप्त है, लाल गोविंदा मेरे को यही है, गोविंदा यहीं पर है। नहीं नहीं स्वामी जी, गोविंदा में बोल वेजिटेबल भी मिलता है आपको, बोल वेजिटेबल चाहिए। अरे क्या गोविंदा, अपने संस्कार को देखो कहां तक, दौड़ तक की गोविंदा तक की सोच सकते। गोविंदा मैंने कोई होटल समय एक्स वाई जेड, क्या मतलब क्या है? हमारी चेतना हमेशा बाह्य गामी ही है, अंतर्गामी नहीं है। उठने के साथ में खिड़की भी खुल देख रहा है, सूते हो, अरे तुम्हारे भीतर थोड़ा देखो यार, भीतर देखने की कोशिश करो, बाहर भाग रहे हो, सब समय बाहर भाग रहा है, बाहर भाग रहा है। अपने तरफ देखो, अपने आप क्या कहा है, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछा न आने वाली गति को और पीछे मैंने वापस आने वाली गति को प्राप्त होते हैं। योगी जन है वापस भी आ सकते नहीं भी आ सकते। श्री रामकृष्ण परमहंस देव ने बड़ी सुंदर बात कही, कहा कि एक दीवार है, दीवार दीवार के ऊपर लोग बैठते हैं, बैठ करके उधर देखते हैं, आ बहुत सुंदर अद्भुत, उधर कूद जाते हैं। ये दुनिया है, दुनिया के ऊपर साधना की दीवार है, साधना की दीवार के पीछे, साधना की दीवार के पल्ली पार स्वर्ग है। तो उस स्वर्ग को देख करके इतनी उसको खुशी होती है कि वहां कूद जाते हैं फिर वापस नहीं आते। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, ऐसा वो दीवार के ऊपर बैठकर उधर कूद गया वो तो वापस नहीं आता है, किंतु दीवार के ऊपर बैठ करके वो स्वर्ग को दीवार के ऊपर से देख करके हमारे कल्याण के लिए वापस भी आते हैं। आइए हम आपको बताते हैं, परम तत्व की प्राप्ति के बाद में मृत्यु हो जाए इतनी आवश्यक बात नहीं है ना। बुद्ध है उनको परम तत्व की प्राप्ति हो गई, उसको निर्वाण प्राप्त हो गई। निर्वाण माने उनके प्राण त्याग नहीं हुआ, उनको ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो गई, ब्रह्म दर्शन हो गया। उसके बाद में तो वो 40-41 साल तक जिए। वो जब मरने लगे तो उनके पास में उनका एक शिष्य था, उन्होंने बोला महाराज अभी आपकी मृत्यु हो रही है फिर हमारा क्या होगा। बुद्ध ने कहा अरे मेरी मृत्यु तो 41 साल के पहले हो गई थी, तो जो देख रहा है ना वो तो केवल शरीर है, मेरी चेतना जो है कामना है वासना है तृष्णा है विचार है ख्याल है तमाम से मैं परे हो गया था, अभी शून्यावकाश में शरीर जो है वो ही चल रहा था। ये शरीर चलता है, ये जो शरीर चलता है वो ही चल रहा है, किंतु मेरी तो मृत्यु हो गई थी, अहम तो था ही नहीं वो उस समय में। वो ऐसे होता है, महावीर को भी ऐसे हुआ, परम कल्याण की प्राप्ति के बाद में अनेक साल तक जिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्राप्ति के बाद में बस एकदम चले जाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी महाराज चले गए 39 साल की उम्र में, काफी लोग हैं। हाँ वो श्री रामकृष्ण परमहंस देव हैं तो उनको देखिए, वो जब चले जाते हैं फिर क्यों फिर पीछे क्या कैसे करके जीते। अगर मान लीजिए कि उनको ब्रह्म तत्व की उपलब्धि हो गई है, तादात्म विषयम तयो तद्रूप तदाकार तन्मय, उस परम तत्व में उनका प्रवेश हो गया है, वो ब्रह्म का जीवन जी रहे हैं, तो ब्रह्म का जीवन जीते हुए फिर वो इस देह में जब रहते हैं संसार में रहते हैं तो किसके आधार पर रहते हैं कि जब तक शरीर है तब तक मन भी है, और मन है तो मन का नाम ही क्या है, वो इच्छाओं का समूह है, इच्छाओं का समूह है। पेड़ में जैसे चिड़िया आती है जाती है, मन में भी विचार आते जाते हैं, तो विचार का समूह है, इच्छाओं का समूह है। तो इच्छाओं के समूह के साथ वाले मन को लेकर के आप बिना किसी विचार के आकांक्षा के तृष्णा के जीवन यापन कैसे करते हो। देखिए रामकृष्ण परमहंस देव है तो उनको एक ऐसी आदत थी कि वो दक्षिणेश्वर में जहां अपने कमरे में रहते थे वहां से उठ करके नौबत खाना में, मां रहती थी शारदामणि देवी, तो वहां थोड़ा आकर के चक्कर लगा, हाँ जी क्या हो गया है, कि बच्चे खावाड़ की बच्चे, ये जे मोजा जीनीश आज के बालोरान ना बच्चे, क्या हो रहा है क्या खाना बन रहा है। तो शारदामणि देवी बोलती थी लॉज कुड़ून, थोड़ा आपको शर्म तो आनी चाहिए, इतना लोग वहां आपके लिए बैठे सत्संग करने के लिए, वो थोड़ा एक आधा घंटा हुआ नहीं फिर आकर के रसोई में चक्कर लगाते हो, कोई लज्जा भी है कि नहीं आपको, लोग क्या सोचेंगे। हाँ ये देखो थोड़ा एक 20 मिनट हुआ नहीं अपनी बीबी को देख के आता है, अरे देखो भाई मैं जो आ रहा हूं
वो तुम्हारे लिए थोड़ा आ रहा हूं। तो किसके लिए आ रहा है? जिसके सहारे में रहा हूं उसके लिए तो आ रहा हूं। क्यों? बोले मैं जिन जिनको मेरे पास में आना चाहता हूं वो सब आ जाएंगे, बस फिर मैं छोड़ दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मन की आकांक्षाएं, तृष्णाएं, वासनाओं की ढेर सारी रस्सियां में पहले बंधा रहा जब कामार पुकुर से आया था, अब एक एक करके मैंने तमाम रस्सियां काट दी। कोई तृष्णा नहीं, इच्छा नहीं, मान नहीं है, कीर्ति नहीं है, यश नहीं है, तो क्या एक रस्सी रखी बांध करके जिसके सहारे जी रहा हूं वो है भोग खाने का। इसलिए मैं बार बार चक्कर लगाता हूं। अगर यहां चक्कर नहीं लगाऊंगा, मैं जोर से अपने मन को खींच करके नीचे लाता हूं तब तो मैं यहां आता हूं। जिस दिन मैंने इस रस्सी को काट दिया बस मैं इसे चला जाऊंगा। तो उसको मां शारदा मणि देवी ने गंभीर से नहीं लिया। किस बुका में ये क्या पागल की जैसे बात कर रहे हो? बोले मैं सत्य कथा बोली, मैं आपको सत्य बोल रहा हूं। जिस दिन मैं खाने में रुचि नहीं दिखाऊंगा उसमें तीन दिन से ज्यादा मेरा शरीर नहीं रहेगा। जा ऐसे बोल दिया उसको। किंतु एक समय आ गया, ऐसा एक समय आ गया, वो नरेंद्रनाथ को कहां पर काशीपुर बागान में बोले, नरेंद्र आज के हमें खिचड़ी खेते चाहिए, आज हम खिचड़ी खाना चाहता हूं। तो उनके पास पैसे नहीं थे, नोरेन, लाटू, शरद, शशि, राखाल, ये सब जवान जवान लड़के थे, छोटे बड़े कोई 12 लड़के थे, एक पैसा नहीं था। तो महेंद्रनाथ गुप्त से इधर से उधर से कुछ पैसा जमा करके उन्होंने खिचड़ी बनाई। खिचड़ी में बड़ा बड़ा प्याज काट करके, एक प्याज का 2 टुकड़ा, एक आलू का 2 टुकड़ा, और तेज पत्ता, लौंग, दालचीनी सब डाल के बढ़िया घी डाल के खिचड़ी बनाई। लो ठाकुर खाओ। उनको तो बहुत बुरा कैंसर था, गले में पानी भी नहीं जा रहा है। अब पानी जब नहीं जा रहा है तो खिचड़ी कैसे खाएंगे? यही जे आमी तुम्हारे मोन दिए खाओ, अभी मैं तुम्हारे सबके मुंह से खाऊंगा। तो नरेंद्र महाराज बड़े लड़ गए, जो तुमको खाना नहीं था तो इतना हमको ये सिरदर्द क्यों करवाया? इधर से उधर से पैसा बटोर करके शारदा मणि देवी खुद गई थाली लेकर के, उनको आते देख करके उन्होंने करवट बदल करके सो गया। वो देखने के साथ में उनके हाथ से थाली गिर गई। क्यों? अब तक उन्होंने गंभीर नहीं कहा था, उनको याद आ गया शिष्य ठाकुर की बोले चलाए, ठाकुर ने क्या कहा था, जिस दिन तुम खाना लेके आओ और मैं मुंह फेर लूं, समझना मैं और 3 दिन से ज्यादा नहीं रहूंगा। तो जो जिनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, जिनकी चेतना महत चेतना में एक रूप हो गई है, वो उस चेतना से परे नहीं है, वह स्वयं चेतना स्वरूप है, चलंती नारायण, वो प्रत्यक्ष चलते हुए नारायण के समान है, फिर भी वो किसके लिए जीते? मेरे आपके सबके लिए वो उनका जीवन होता है, द लिव फॉर अस, हमारे कल्याण के लिए। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हितायच, जगत के हित के लिए वो आत्मा के मोक्ष की कामना है। और आत्मा का मोक्ष तो हुआ है, किंतु जगत हिता के लिए वो उनका जीवन यापन हो रहा है। कृष्ण कहते हैं कि देखो अर्जुन, ये काल में शरीर त्याग करने के बाद में योगी जन है वो कुछ तो ऐसी गति को प्राप्त होते हैं कि जो चला गया फिर नहीं आएगा, उसको बोलते हैं कि वो सूर्य मार्ग से गए हैं। किंतु जो तो जाकर के वापस आते हैं तो वो चंद्र मार्ग से आते हैं। तो सूर्य गति क्या है, ये चंद्र गति क्या है, ये उत्तरायण क्या है, दक्षिणायन क्या है? तो कहते हैं अग्नि ज्योति रह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः। ज्योति ही अग्नि ही आहा शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता ब्रह्मविद जनः ब्रह्म गच्छन्ति। ज्योति कहते हैं ज्योतिर्मय अग्नि, अग्नि अभिमानी देवता है, हमेशा ऊपर जाता है, और अह दिन का अभिमानी देवता है। अग्नि भी हो, ज्योति भी हो, दिन भी हो, शुक्ल पक्ष भी हो, और उत्तरायण काल भी हो, तो उस मार्ग में मरकर गए वाले ब्रह्मवेत्ता परमेश्वर की उपासना से, परमेश्वर को परोक्ष भाव से जिन्होंने प्राप्ति कर ली, वो ब्रह्मवेत्ता योगी जन ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। देखिए ध्यान दें, ये क्या कहा है, क्या कहा है कि अग्नि चाहिए, ज्योति चाहिए, आह माने दिन चाहिए,
शुक्ल पक्ष चाहिए, षण्मासा उत्तरायण काल चाहिए, ये तमाम प्रतीक हैं। ऐसा नहीं कि कोई मर रहा है तो उनके सामने में एक दिया रख दूं, माथे दीवो करो, ये एक समझदारी की बात है। जो दिया है ना वो तो दिया नहीं चाहिए उनको। उत्तरायण काल का अर्थ होता है कि जीवन का पूर्वार्ध, जीवन का उत्तरार्ध। 50 साल के पहले पूर्वार्ध होता है, 50 साल के बाद में उत्तरार्ध होता है। तो छोटी उम्र में मृत्यु हो जाना उचित नहीं मानते हैं, किंतु स्वामी विवेकानंद छोटी उम्र में गए और शंकराचार्य जी महाराज भी 32 साल में ही चले गए, तो फिर क्या सत्य है? अरे वो छोटी उम्र नहीं बोलते, उत्तरायण काल। उत्तरायण काल क्या होता है कि वेद के भी दो भाग कर ले आप, एक पूर्वार्ध पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में ब्राह्मण है, संहिता है, उत्तर मीमांसा में आपके ये उपनिषद है, आपका आरण्यक है। तो वेदांत ज्ञान में जिनकी गति मति स्थित है, वेदांत ज्ञान क्या है? वेदांत ज्ञान यही है कि ये शरीर में नहीं हूं, मैं ये नाशवान शरीर नहीं हूं, मैं ये चंचल मन नहीं हूं, मैं यह बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त अहंकार भी नहीं हूं, मैं ये दृश्यमान कुछ भी नहीं हूं। ये दृश्यमान जो है तमाम इल्यूजन है, मिथ्या है, इज ओनली ए वेपर, ये हवा में है सब, ये तमाम स्पंदन है। तो क्या सत्य है? मेरे भीतर में जो एक आत्मा है, जिसकी वजह से मैं खड़ा हो सकता हूं, जिसकी वजह से मैं देख सकता हूं, जिसकी वजह से मैं सुन सकता हूं, वही सत्य है। क्योंकि वो जो दिया जलता है उसके नीचे एक बाती भी होती है, किंतु अरे वो तेल नहीं हो तो खाली बाती क्या करेगी नारायण? वो तेल तो होना चाहिए। बढ़िया सी गाड़ी है हमारे पास में, हाँ हो, अच्छे से अच्छा गाड़ी मान लीजिए 3-4 करोड़ रुपए की है, किंतु गाड़ी का अंदर पेट्रोल डाला नहीं है, हाँ CNG डाला है नहीं है, आपका डीजल भी डाला नहीं है, तो किससे चलेगी? चलाने के लिए अंदर फ्यूल तो चाहिए कि नहीं है? हमारे जीवन में अभी अन्न वही ब्रह्म, हम खाना खाते तो शरीर चलता है। आज एकादशी है महाराज, आज खाने की बात मत करो, धन एकादशी, एकादशी करिए तो वैकुंठ पामिए, मैं एकादशी नो करो उपवास, केड़ा खादा छे दसने बार, धन एकादशी सिंगोड़ानो में सिरो करो, सूरण नो करो दूध पाक। तो ये क्या है? एकादशी नहीं, एकादश, एकादशी मने 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, वो तमाम को उपवास, ये अपवास नहीं, गुजराती लोग बोलते हैं आज मैं अपवास करे, अपवास नहीं है, उपवास, उप समीप वास रहना, आज खाना नहीं खाना या तो कम खाना, कोशिश करो नमक नहीं खाओ। और महाराज जी मेरे को डायबिटीज है, तो ठीक है तो 2 हर घंटे में खा लो। क्या खाएंगे? वो थोड़ा पपीता खा ले, थोड़ा तरबूज खा ले, थोड़ा साकर टेटी खा ले, थोड़ा काकड़ी खा ले, हाँ भजिया नहीं खाओ, कंदन भजिया करे समझ नहीं, उपवास। क्या कहते हैं कि आपका ये जो षण्मास है उत्तरायण काल वेदांत, वो वेदांत क्या है? यही है कि अहम ब्रह्मास्मि, ये वेदांत है, मैं ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि तत्त्वम, तुम भी वही तत्व हो, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये अयम आत्मा ब्रह्म। तो इस आत्मा ही ब्रह्म है, मैं ब्रह्म में ही स्थित हूं, ब्रह्म ही मेरा स्वरूप है, और सर्वत्र केवल ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वेदांत सुनने वाले लोग समझते नहीं, गड़बड़ करते। एक महिला है, बराबर वेदांत क्लास में जाती रही, वो इतना करती थी कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तो घर में जाकर के भोजन बनाई, खा ली, सो गई, पति देव आए, सुनती हो, हाँ जी क्या है? नारायण बोलिए। बोले भोजन? अरे जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। अरे भगवती मातेश्वरी भोजन देखिए, देहो नाहम जीवो नाहम, प्रत्येक भिन्न त्वमेव अहम्। अरे नाहम ना तुम दफ्तर गुम। अरे बोले देखो भाई ये क्या है, ब्रह्म ही जब सत्य है, जगत मिथ्या है, तो ये भोजन क्या? हाँ
भजन में ध्यान लगाओ। वो बेचारा खुद चूल्हा फूंका और अपना रोटी बनाई, सब्जी वब्जी बनाई और खिचड़ी पका करके खाने बैठा, लगा कि उसमें उसने खाया कि नहीं पता नहीं उसको, वो खाके पी के सोई थी। फिर वो अच्छा था, पति कल्याणमय था, उदार चरित था। तो उसने कहा, देवी जी अगर ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, फिर भी शरीर भी तो ब्रह्म है, या दृश्यम जो तमाम जगत दिखने में आता सर्वत्र ब्रह्म ही है, तो आपके शरीर का भी पालन करना चाहिए। आइए थोड़ा बैठिए। नहीं नहीं, ये भूख प्यास जो है वो शरीर का धर्म है। ठीक है भगवती, बैठो तो सही। तो पास बैठ गई। जब बैठ गई तो उन्होंने जलता हुआ लकड़ी उसके हाथ में लगा दिया। वो चिल्लाई, क्या हो रहा है? बोले, शरीर का धर्म तो अग्नि नहीं है, ये शरीर का धर्म है, वो आपको जलाने वाला नहीं है, आपको डुबाने वाला नहीं है। न जायते न मृयते वा कदाचिन। अरे जिसका जन्म नहीं, जिसका मृत्यु नहीं, उसको अग्नि क्या, उसको पानी क्या, एक और लगाऊं क्या? मतलब क्या है? देखिए, ये ब्रह्म के भ्रम में नहीं रहना चाहिए। जो शरीर जब तक है, तो शरीर जब तक रहेगा, जब तक तुरिया अवस्था में नहीं चले जाते हो। एक बार तुरिया अवस्था में चले गए, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं। मैंने एक महात्मा को देखा, हमारा बहुत पुण्य रहा महात्माओं की सेवा करने का, बहुत पुण्य। महात्मा को देखा, वो जो एनस होता है, पूंठ बोलते गुजराती में, मलद्वार में, वो प्रोलप्स हो गया, उनको पाइल्स बोलते, उपवास करेंगे वो, नवरात्रि में 10 दिन पानी नहीं पियेंगे, एकादशी के दिन भी नहीं पियेंगे, बहुत ऐसे उपवास करेंगे एकादशी के दिन भी। वो ऐसे करके करके उनको पाइल्स हो गया, बहुत खाना खा नहीं खा कर, ये उचित नहीं है। गीता कहती है, युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेतसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति। तो बहुत खाना नहीं खाना, बहुत बोलना नहीं बोलना, बहुत सोना नहीं सोना, ये बात नहीं। आपको संतुलन चाहिए, समत्वम योग उच्यते, संतुलन। ढेर मत खा, थोड़ा तो खा, मगर खा थोड़ा, वो जरूरी बात है। तो वो तो उनको पूंठ पोलेप्स हो गया था, वो पूरा आए, वो एनस बाहर आ गया, आ गया तो बहुत तकलीफ में बैठ नहीं सकते। तो उनको बैठाते थे लेटने के समान, लेटने के बाद में जो पूंठ है उसको गर्म पानी में रखते थे, फिर उसको थोड़ा इसको साफ करके पट्टी बांधते थे। तो हम ब्रह्मचारी रहे तो हमको बोलते थे, देखिए ब्रह्मचारी जी, आप जो पट्टी बांध रहे हो ना, वो ऐसे बांधने से तो बनता है, किंतु उल्टा जब करेंगे तो खुल जाएगा। अभी उनको कितनी व्यथा होती होगी समझो, उस व्यथा के बीच में भी उनका मन है वो बंधन मोक्ष को ज्ञान देने के लिए। कैसी ऊंची अवस्था होगी महात्मा के, देखे तो ये संभव है। तो ये जो ऊंची अवस्था है, हम तो कितना गंगा जी नहाए, कितना यमुना जी नहाए, कितना माला फेर लें, मृत्यु के समय हमारे मन की अवस्था कैसे होती है? मृत्यु के समय में एक निर्विकल्प अवस्था, निर्विचार अवस्था, हाँ, एकदम किसी में कोई विचार नहीं, ब्रह्मा भी नहीं चाहिए, विष्णु भी नहीं, महेश भी नहीं चाहिए, गुरु कुछ नहीं, एक बार ऐसी अवस्था शांत। वो जब तेंदुलकर है ऐसा करके मारता है, इतना करके मारता है ऐसे जोर से, वो जो छक्का मारता है उसके बेट को बोल लग गया, तो वो जो बेट के द्वारा बोल को फटका मारा है, उस समय उसके मन की स्थिति में क्या उनकी पत्नी, उनके बच्चे, मेरा भारत मान, कुछ भी आता है? एक ही है विचार कि वो बेट बोला रहा है उसको, बस खत्म। तो उसके उस एक विचार में है, और वो लगने के बाद में फिर एक क्षण भर के लिए निर्विचार हो जाता है। जैसे कि पुराने मंदिरों का एक नियम था, पुराने मंदिरों का नियम क्या था कि मंदिर में जाने के बाद, मंदिर में दर्शन करने के बाद में बाहर आवता पहला ओटला पर बैसू। ये क्यों था? क्योंकि मंदिर में बिजली नहीं थी, अंधेरा था, मंदिर में बिजली नहीं थी, अंधेरा था। आजकल तो जितना बिजली अंदर है उतना बाहर रह गया है, जैन मंदिरों में अभी भी बिजली नहीं करते, दक्षिण भारत में तो बिल्कुल अंदर चले जाओ तो बिल्कुल नहीं करते हैं। तो मंदिर क्या होता है, अरे अंदर के अंदर के अंदर के अंदर वो अंधेरा होता है, तो आकस्मिक अंधेरे से आकस्मिक सूर्य प्रकाश में आएंगे, आंखें चौंधिया जाएंगी आपकी, गिर भी पड़ सकते हो। थोड़ा बैठो, दोनों को एडजस्ट करो। ये जो एडजस्टमेंट है ना, एक बीच की क्षण होती है, उस क्षण को क्या बोलते हैं, लल, लल बोलते हैं क्षण। ऐसे क्षण वो इधर भी नहीं है, उधर भी नहीं है। हाँ, आपसे क्या कहा कि जो गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाने में एक गियर में से दो गियर में जाते हो, या दो में से तीन गियर में जाते हो, तो एक में से दो में गए तो एक अवस्था ऐसी रहेगी जो एक में भी नहीं है, दो में नहीं, बीच में आ जाएगा। दो में से तीन में गया तो दो में नहीं तीन में, बीच में, वो बीच में जो है लल है, वो उच्च क्षण जो है हमारे जीवन में, एक ऐसा क्षण कि जब आप जीवन में भी नहीं है, मृत्यु में भी नहीं है, जीवन से परे मृत्यु से इधर, एक क्षण के लिए, उसी क्षण में अगर पांव प्राण चला गया, बस बेड़ा पार। किंतु उसके लिए प्रयत्न तो करें, क्या करें, अपने आप को खाली करने का। कौन कौन तप किनो बसुरिया, हे बसुरी तूने क्या तप किया, बोला उसने कहा मैंने अपने आप को खाली कर दिया। अपने आप को खाली कर देना, राइट, खाली मैंने कुछ नहीं, आमी किची चाइना छाड़ी चरण दुई खाने, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये रामकृष्ण परमहंस देव हैं, उनका शरीर जब शांत हो गया तो शारदामणि देवी है वो थोड़ा यात्रा में गई थी, गोपाल की मां के साथ में गई थी, और शारदामणि देवी जी के भाई की बेटी थी राधु, बहुत तकलीफ, मां को सबसे अधिक दुख उसने लड़की ने दिया। वो राधु को लेकर के शारदामणि देवी भारत दर्शन में गई तो रामनद के महाराजा स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य थे, तो उन्होंने कहा हमारे गुरु की गुरु माता आई हैं, तो रामनद के अंडर में ही उनके ताबा में ये रामेश्वर मंदिर था, तो रामेश्वर मंदिर का दर्शन कराने के बाद में रामनद के महाराजा हैं। मां बिल्कुल ऐसे फटा हुआ कपड़ा नहीं, सिला हुआ भी मुश्किल जेब में, बहुत मैला सादा कपड़ा पहनकर गई थी, उसमें कोई बाह्य आडंबर नहीं, कुछ भी नहीं, इतना सादा। वो एक दिन बहुत तकलीफ में थी, जब रामकृष्ण परमहंस जब चले गए तो प्रकट हो गया, मृत्यु के बाद में, संस्कार के बाद में, शारदामणि देवी के बाद में, कभी रोना नहीं, बोले तुम्हारे हाथ की कंगन निकालना नहीं और किसी से कुछ मांगना नहीं। तीन बात कही थी रामकृष्ण परमहंस देव के महाप्रयाण के बाद में, अग्नि संस्कार के बाद में, ये अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ श्री श्रीमान शारदामणि देवी, कहा कि तुम अपनी कंगन नहीं निकालना, सौभाग्य चिन्ह ना, और किसी के पास हाथ फैलाना नहीं, किसी से कुछ नहीं मांगना, रोना तो बिल्कुल नहीं। बोले मेरे को अपने लिए नहीं, तुम्हारा नाम लेके जो बच्चे आए हैं, शरद महाराज, शशि महाराज, लाटू महाराज, राखाल महाराज, इनको मैं क्या करूं। बोले चिंता ना कर, इनका तमाम का है कल्याण हो जाएगा, सबका हो जाएगा, बोध हो जाएगा। ये हमारे सहजानंद स्वामी जी महाराज हैं, स्वामीनारायण भगवान। तो ये स्वामीनारायण भगवान तो पहले छपैया में थे, गुजरात में आए थे, गुजरात में आकर के रामानंद स्वामी हैं, तो उन्होंने इनको संन्यास दिया, गद्दी में बैठाया, तो उस समय कहा रामानंद स्वामी जी ने, मांगो तुमको क्या चाहिए। कहा मांगो तुमको क्या चाहिए, उनका महाराज आपने हमको जो यहां बैठाया है तो इस शरीर का नाम लेकर कोई भी आए कभी भूखा नहीं रहना चाहिए। बताइए संत लोग अपने लिए कुछ नहीं मांगते, सब कल्याण के लिए मांगते हैं। वो एक बादशाह रहे कटक के, शाड़ा बेग, वो शाड़ा बेग क्या बोलते हैं बादशाह, मुंह आखिरे भरी दिया सबू लूह, अन्न आखिरे ना रहू, मुंह मुखरे ढाल है प्रभु गरल, अन्न मुखर ढाल महू। अरे महाराज ये ईश्वर है जगन्नाथ, अगर आपको कुछ दुख देना है तो मुझको देना, बाकी तमाम को सुख देना। जहर डालना है तो मेरे मुंह में डालो, मेरी आंखों में डालो, किंतु बाकी सबके मुंह में और आंखों में शहद नहीं डालना। तुम्हारे दरबार में कितना दुख है मेरे कंधे में रखो, मुझे कोई चिंता नहीं। मृत्यु के समय में हर व्यक्ति स्वर्ग की इच्छा रखता है, जे मरोना बासी सरग लाड़सी मोलागी मुकुल थाओ, लेट हिम गो टू द हेवन, उसके बदले में करोड़ों दफे अगर नरक में जाना है मैं जाऊंगा कि तू उनको छोड़ो। देखिए कामना है, कैसी कामना है, परोपकार की है, लोक कल्याण की है, लोक संग्रह की है, तो ये क्या है, उनके लिए उनकी प्रजा नहीं है, वो स्वयं जगन्नाथ है, वही दिव्य वही भव्य। तो क्या कहा कि अग्नि ज्योति रहा शुक्ल, एक तो उत्तरायण काल हो, उत्तरायण काल माने कि आपकी मन की अवस्था है मैं ये देह नहीं हूं, मैं देह के बंधन में नहीं हूं, मैं देह से मुक्त हूं, नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध आजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ज्योतिषाम अभी तक ज्योति, मैं ज्योतियों की ज्योति हूं। हाँ मैं कैसा हूं, अजरानंद अमरानंद अचलानंद हूं, हर हाल में अल मस्त सच्चिदानंद हूं, कैवल्य केवल कूटस्थानंद हूं, एक ऐसी अवस्था बस सच्चिदानंद की अवस्था, ऐसी अवस्था में रहे, ये उत्तरायण काल होता है। उत्तरायण काल ये भी होता है कि भाई थोड़े बूढ़े हो गए, बाल सब सफेद आ गए, ये बात है। तो ये एक बात हो गई उत्तरायण काल है, तो क्या कहा षण्मासा छह महीने, एक नहीं है छह महीना उत्तरायण काल में रहना है। छह मास क्या है उत्तरायण काल में, हमारा छह षड ऋपु है,
काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर,
ये तमाम को भी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है, इनसे परे हो जाए। जीवन में किसी बात की काम नहीं, क्रोध किसी अवस्था में नहीं, लोभ भी नहीं, क्षोभ भी नहीं। कैसी अवस्था है? एकदम निर्माण मोहा चित्तसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्व मुक्ता सुखदुख संघ गच्छन्ते मूढ़ा तदवम वयम तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते। तो ऐसी अवस्था हो सकती है? जी, प्रयत्न से हो सकती है। क्या कहा है कि दिन हो भाई रात नहीं हो। दिन होने का मतलब क्या है कि सूर्य हो चंद्रमा नहीं हो। सूर्य है ज्ञान के लिए, सूर्य प्रकाश के लिए, सूर्य विकास के लिए। मृत्यु के समय तक भी मैं ये देखिए, ये हमारे सैफी साहब जो हैं 100 साल जिनका अभी मनाया गया कुछ 25 तारीख को, वो अभी देखिए उन्होंने एक दो साल के पहले कितना बड़ा हॉस्पिटल बना दिया। पुराना हॉस्पिटल हमने 25 साल के पहले देखा था, कल प्रातःकाल हमने शेयर करने के बड़े सारे विदेशी लोग उनके फोटो खींच रहे, मेरे को पूछ रहे इट्स अ पैलेस और अ होटल। मैंने बोला पैलेस भी नहीं है, होटल भी नहीं, हॉस्पिटल। आई डोंट बिलीव। मैंने कहा रात में आना, रोशनी देखने से और भी बढ़िया लगेगा। ये क्या संग्रह है? मृत्यु के समय तक, क्यों? हमारे उपनिषद ने कहा है जी जी विषय छतम समाह एवं तई नान्यते सोस्ती। अरे मुझको 100 साल जीने की इच्छा हो, किंतु 100 साल ऐसा नहीं जीना है। हाँ, मरते मरते तक भी मैं किसी को कल्याण करके जाऊं। हम लोग मिलने गए तो हाथ पकड़ करके कितना दफे कहा तमे आव्या तो हमने बहु आनंद थयो, बहु आनंद थयो, बहु आनंद थयो। हमने पूछा 25 साल के पहले मिले थे महाराज आपके 75वें जन्मदिन में, अभी 100 जन्मदिन में मिल रहे हैं, तो अभी क्या 125वां साल में मिलेंगे? अरे नहीं नहीं, 5 वर्ष बीजा। कितना स्पष्ट विचार है उसके जीवन में। इसको नाम बोलते हैं दिन चढ़ा हुआ। दिन चढ़ा हुआ माने क्या है? आपके सिर में जो सूरज है, आपके सिर में जो ज्योति है, आपके सिर में जो प्रकाश है, जो सिर के माथा ऊपर दियो रखवानो नती, वो आपकी चेतना जो है, आपकी बुद्धि है, आपकी विचार क्षमता है। हाँ, इसको हम बोलते हैं सेरिब्रम एंड सेरिबलम। दे आर नॉट डाउन, मगज फेल नहीं हो गया है, अवेयरनेस है, जागृति है, पूर्णता है, ब्रह्म में स्थिति है, कल्याण की भावना है, एकदम जागृत। तो मृत्यु के समय पर्यंत भी जागृत रहे, बुद्धि सद्बुद्धि रहे, लोक कल्याण की कामना रहे, और अंतकाल पर्यंत वो किसी भी वासना से क्षम होकर के एकदम शांत में रहे, आनंद में रहे, उल्लास में रहे, तो उसको बोलते हैं ये तो तत्र प्रयाता गच्छन्ति। ऐसी स्थिति में अगर वो जाए तो ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः, तो वो लोग ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। तो आप भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? क्या करना चाहिए? सबसे पहला है अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। ये सब छोकरे छोकरे हमने देख रहे हैं 5 माल में रहते हैं, अरे वो 3 माल से 4 माल में जाना, 4 से 5 में लिफ्ट के बिना गुजारा नहीं है। ऐसे क्या हाथ पांव टूट गए? कोशिश करो 14 मंजिल तक लिफ्ट यूज मत करो। हाँ, कभी आपका घुटन खराब नहीं होगा, कभी आपकी कमर खराब नहीं होगी, कभी आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, डायबिटीज होगा तो जाएगा। अरे भाग्यवान हो बंबई वाले, हाँ, कि आपके लिए एक सब समय में चलता है। हाँ, 7:45 फास्ट पकड़वानी एटले पकड़वानी एटले पकड़वानी, फिर दौड़ के चलता है, हाई जम्प करता है, लॉन्ग जम्प करता है। पहले ये मुंबई समाचार है, वो मुंबई समाचार में नहीं है, एक और अखबार गुजराती में आता था, जन्मभूमि प्रवासी। वो जन्मभूमि प्रवासी में रमेश बुच नाम का कार्टूनिस्ट था, रमेश बुच। वो मैं कितने साल पहले की, 50 साल पहले की बात हूँ, तो वो बोलता था क्या ओलंपिक जो था ही नहीं, इमा मुंबई वाला ने मुकलो ने तो बदाज मेडल लई ने आवे, कारण के ये लोगों ने हाई जम्प केम करी ने आ दीवार कूदी ने जवानू अने 7:32 फास्ट पकड़वानी, हाई जम्प लॉन्ग जम्प दौड़ने का, वो सब बंबई वाले सब पके हैं, जानते हैं थोड़ा है, मगर वो समय से घर से निकलते ही नहीं है। वो फास्ट दौड़ना है, सीढ़ियां चढ़ना है, जंप करना है, मगर वो पकड़ ही लेता है वो वो उन्हीं के बस की बात है। तो ये क्यों ऐसा है? हम लोग का भाग्य है कि हम लोग को एक फिक्स समय दिया, इतना बजे जाना, इतना बजे आना। ये थोड़ा अपने जीवन में समय निकालो, शरीर माध्यम करो धर्म साधनम, अपने शरीर को स्वस्थ रखो, खाने पीने में थोड़ा संयम करो, और सुबह दोपहर शाम रात थोड़ा थोड़ा प्रणव ओंकार का ध्यान करो। नारायण, चाबी आपके हाथ में कृष्ण ने दे दिए, अभी आप दाहिनी घुमाएं कि बाएं घुमाएं, एक और घुमाएंगे तो आपके लिए मुक्ति का द्वार खुला है, दूसरी ओर घुमा देंगे तो भाई बंधन तो है ही है, आपको बंधन से मुक्ति हो। यह वाणी को विराम करके कल इन तमाम विचारों की समाप्ति करेंगे। ओम शांति शांति शांति। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। कल शाम को जो शाम की सभा होती है 6:30 से 7:30, इसमें ये हमने ऐसा प्यार से सुझाव था कि आज क्रिकेट है तो लोग आएंगे कि नहीं, हमने कहा देखिए कोई आएगा तो हम प्रवचन करेंगे, नहीं आएगा तब भी एक व्यक्ति के लिए भी हम बैठेंगे। तो शाम का प्रवचन 6:30 से 7:30 होगा, जिन लोगों के लिए आने की सुव्यवस्था हो, रुचि हो, वो अवश्य उपस्थित हो। ओम शांति। और कल प्रातःकाल और सायंकाल हमारी इस यज्ञ की अंतिम सेवा होगी। ओम नमो नारायण।